आज है 3 मई दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। उत्तर भारत में कल आई धूल भरी आंधी में जानमाल का भारी नुकसान, लगभग 100 लोग मारे गए।
बड़े जोरदार से आंधी आई, इस तरफ की आई तो हमारी माँ जिंदी थी, जब उधर से आई तो दीवार दोनों पलट गई और हमारी माँ उसमें दब गई।
कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच तू-तू में और तीखी हुई।
मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, वो सब है, मतलब पूरा का पूरा गैंग।
बदायूं में दलित खेतीहर के साथ कथित अत्याचार के मामले पर बीबीसी की खास रिपोर्ट।
वो चाहते थे कि हम गेहूं काटे उनके, लेकिन हमने उनके गेहूं नहीं काटे, अपने काटते रहे। उसी टाइम आए, बस निकाल के जूता मारने लगे।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। उत्तर भारत में बुधवार को आई जोरदार धूल भरी आंधी में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई हैं। राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि कई दशकों के बाद इतना भीषण तूफान देखने को मिला। ज्यादातर मौतें मकान ढहने के कारण हुई जब लोग सो रहे थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान आगरा में हुआ है। बिहार के मोतिहारी में एक निजी बस पलटने से कई लोगों की मौत की आशंका है। ये निजी बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। बस पलटते ही उसमें आग लग गई, जिससे नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। बास्क मिलिटेंट समूह ईटीए ने कहा है कि उसने खुद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही स्पेन से अलग होने की एक दशक पुरानी लड़ाई भी खत्म हो गई है। संगठन ने कहा है कि उसने अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी बंद कर दी हैं। ईरान ने कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से पीछे हटने की धमकी दी है। ट्रंप 12 मई तक तय करेंगे कि ईरान पर प्रतिबंधों में ढील बरकरार रखी जाए या नहीं। इन प्रतिबंधों को फिर से लगाने पर उस समझौते का उल्लंघन होगा, जिसके तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए राजी हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि ईरान को डराया नहीं जा सकता।
Let me make it absolutely clear once and for all. We will neither outsource our security.
मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि ना तो हम अपनी सुरक्षा को किसी और के हवाले करेंगे और ना ही इस समझौते पर फिर से विचार करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक घर खरीदकर उसमें रहना शुरू करें या फिर उसे तोड़कर वहां पर इमारत बनाएं और 2 साल बाद आकर कोई कहे कि उस दाम पर फिर से मोलभाव कर लिया जाए जिस पर यह सौदा हुआ था। ये थे ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के शब्द। इसराइली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक फिलिस्तीनियों ने गजा से इसराइल में जो पतंगें भेजी थीं उनसे $1,20,000 का नुकसान हुआ है। गजा और इसराइल की सीमा पर पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे प्रदर्शनों के दौरान जलते हुए ईंधनों वाले कनस्तरों को पतंग के जरिए इसराइल में भेजा जा रहा है। दक्षिण जर्मनी के एलवांगन में प्रवासियों के केंद्र में पुलिस की छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। एलवांगन में ज्यादातर अफ्रीका से आए शरणार्थी हैं। सोमवार को लगभग 150 प्रवासियों ने पुलिस बलों को उस शख्स को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था जिसे वापस उसके देश भेजा जाना था। जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्री होस्ट सीहोफर ने जर्मनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रवासियों ने जो किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
वहाँ
जो भी हुआ चौंकाने वाला है। सुरक्षा बलों और पुलिस ने जो भी कदम उठाए हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। इस तरह की हरकतों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ वो कानून का सम्मान करने वाले नागरिकों के चेहरे पर एक तमाचा है। अतिथि सत्कार की भावना का इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये थे जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्री होस्ट सीहोफर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने विवादित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र योजना आरंभ की है। इस योजना का उनकी ही सरकार में विरोध हो रहा है। इन डिजिटल पहचान पत्रों को जारी किए जाने के समर्थक कहते हैं कि इनसे धोखाधड़ी कम होगी, जबकि आलोचक जिनमें अल्पसंख्यक शामिल हैं वे इस बात से नाखुश हैं कि इस पहचान पत्र में सभी की पहचान अफगान के तौर पर की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने वकील रहे माइकल कोहन को वो रकम चुकाई थी जो कोहन ने पॉर्न स्टार को ट्रंप के साथ कथित अफेयर को लेकर खामोश रहने के लिए दी थी। पहले ट्रंप इस बात की जानकारी होने से इनकार करते रहे थे, मगर उन्होंने ये सफाई तब दी है जब उनकी लीगल टीम के नए सदस्य रूडी गियुलानी ने इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की। इससे पहले वो इस तरह का भुगतान होने की जानकारी से इनकार करते रहे थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। उत्तर भारत के कई राज्यों में कल शाम आई धूल भरी भीषण आंधी से जालमार का भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि कुल मिलाकर 95 लोगों की मृत्यु हो गई है। इनमें से 70 लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं और लगभग 200 लोग घायल हैं। इसके अलावा काफी संख्या में मवेशियों की भी मौत हुई है। सूबे के दूसरे कई शहरों में इस आंधी का असर दिखा, लेकिन सबसे अधिक जानमाल का नुकसान आगरा में हुआ है। आगरा से विवेक जैन की रिपोर्ट सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
ताजमहल के शहर आगरा को दिन भर एक अजीब सी खामोशी ने जकड़े रखा। एक रात पहले 132 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने इस खामोशी को जैसे और गहरा दिया हो। शहर की भीड़ बाजार और मोहब्बत के स्मारक के पास नहीं, बल्कि नगर के बड़े अस्पताल के आसपास मौजूद दिखी। कुछ मुर्दा घर के चक्कर लगाने को भी मजबूर हुए। तूफान में घर की दीवार गिरी, जिसके नीचे दबकर कप्तान सिंह की मां ने दम तोड़ दिया। घायल मां रात भर घर में पड़ी रही और वो उसे अस्पताल भी न ले जा पाए।
बड़े जोरदार से आंधी आई, इस तरफ की आई तो हमारी मां जिंदी थी, जब उधर से आई तो दीवार दोनों पलट गई और हमारी मां उसमें दब गई, एक मेरा भतीजा भी दब गया।
उनके गांव के एक दूसरे बुजुर्ग हालांकि खुशकिस्मत थे और अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
एक श्रीचंद नाम के, वो भी 60 साल के हैं, वो भर्ती हैं।
आगरा जिले में अब तक प्रशासन के मुताबिक 44 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से अधिक घायल हैं। सैकड़ों पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए हैं, घर ढह गए हैं और बिजली के खंभे और तारों के टूटने से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा है। ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। इससे पहले 11 अप्रैल को भी ब्रज क्षेत्र में भारी तूफान आया था, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी। अस्पताल में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा,
मतलब मेरी इस लगभग 55 वर्ष होने जा रही है और मैंने ऐसा भीषण भयंकर तूफान जिंदगी में नहीं देखा। जैसे ही तूफान आया तो हम लोगों ने एक शिक्षित होने के कारण सब लोगों से कहा कि आप अंदर ही रहें और कोई बाहर ना निकले। और जैसे जैसे ये घरों के छतों पर ये टीन लगाई जाती है तो वहाँ पर धड़क आवाज़ जो जोर से आवाज़ हो रही थी।
जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद कारोबर गांव के ही एक परिवार के 4 बच्चे सोते हुए दीवार के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इनमें सबसे बड़े बच्चे की उम्र मात्र 11 साल थी। लीपरा के अशोक कुमार के भाई पेड़ के नीचे दब गए और उन्होंने दम तोड़ दिया।
पिताजी खाना खाकर, भाई हमारे खाना खाकर चारपाई पे बैठे थे। बरगद का एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था पास में, बहुत बड़ा, थोड़ी सी हवा आई थी, उसके बाद उन्होंने उठने की कोशिश की खाट पे से, एकदम भूकंप ज्यादा तेजी से आई हवा और वो चारपाई की तरफ गिर गया।
आगरा के अलावा बिजनौर, बरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, कानपुर और संभल क्षेत्रों में भी बुधवार को आई आंधी से भारी नुकसान हुआ।
ये रिपोर्ट आपको सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। राजस्थान के कई इलाके भी आंधी की चपेट में आए, वहां 25 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
इस तूफान ने बुधवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में 33 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कोई 200 लोग इसमें घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक है। धरती पर टूटे पेड़, सैकड़ों कच्चे पक्के मकान, धराशायी दरख्त और बिजली के खंभे तबाही का मंजर बयान करते हैं। सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के राहत मंत्री गुलाबचंद कटारिया गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए और जानकारी दी।
जो आंधी और अंधड़ आया उसके कारण से जान माल का भी नुकसान हुआ, पशुधन का भी हुआ और कई प्रकार के मकानों के डैमेज होने से लेकर के नुकसान हुआ। और इसमें अब तक जो हमारे पास अधिकृत रूप से आई है वो 17 भरतपुर में, 5 धौलपुर में और 2 धौलपुर के लोग जो आगरा में कुछ अपना सामान लेने के लिए गए थे वहाँ उनकी डेथ हुई, ऐसे 7 लोगों की। ऐसे ही धौलपुर में 2 लोग उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले थे उनकी डेथ हमारे यहाँ हुई और उसके बाद अलवर में 9 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे जो मेरे पास नामजद सूची आई है वो 33 है। अभी भी सूची घट बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग इंजर्ड हैं, उनमें से भी सूची में नाम जुड़ सकते हैं, कहीं और कहीं रह गए होंगे तो वो भी इससे जुड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में भेजा है, वे खुद भी शुक्रवार को दौरा करेगी। चश्मदीदों के मुताबिक हवा का आवेग इतना तेज था गोया प्रकृति आवेश में हो, लोग संभल पाते इससे पहले ही तूफान ने तबाही मचा दी। देखते देखते लोग घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचने लगे। अलवर अस्पताल में अपने घायल परिजनों को लेकर पहुंचे लोगों ने यूं चित्रण किया।
शाम को 6:30 बजे के करीब तूफान आया ना, उसमें ये घर में गई और मकान गिर पड़े, ये दब गई। उसमें हम काम पे गए थे, घर पे कोई नहीं था, चार पांच मकान गिरे हमारे और बहुत नुकसान हुआ हमारे।
कच्चा मकान था तो ईंट नीचे गिर गई है, सिर में चोट आई है।
राजस्थान ने अपने रेगिस्तान में रेत के बाउंड्री उठते देखे हैं और सूरज की तपिश भी, लेकिन कुदरत का ऐसा रूप कदाचित पहली बार देखा होगा। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर।
और मैंने कुछ ही देर पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले विभाग के प्रमुख डॉक्टर के सती देवी से संपर्क किया और पूछा कि ऐसी भयंकर आंधी कैसे आई।
तो अभी पूरा प्री मानसून सीजन में आंधी, थंडरस्टॉर्म ये सब बहुत साधारण है, फिर भी ये साल में हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा दिख रहे हैं। और इनके लिए मेन चीज क्या है, एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल के एक सिस्टम होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करते हैं, वो भी प्रसन्न था। उसके साथ दूसरा ये, इफ यू लुक द नॉर्थ वेस्टर्न पूरा पार्ट में इतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, वो बहुत तेज हवा, इवन फुटहिल्स में सब बहुत ईस्टर्ली टाइप ऑफ विंड्स वर प्रिवेलिंग। तो क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके, ये इतना ज्यादा ईस्टर्ली विंड ये टाइम पर होना बहुत असाधारण है, क्योंकि इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, हवा भी बहुत तेज था और फुटहिल्स के तरफ बहुत ईस्टर्ली दे, और एक WD भी आ रहा था। वो ये सब सिस्टम के इंटरेक्शन के वजह से पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो गया था।
अच्छा, तो आप तो आप जिस विभाग में काम करती हैं वो हाँ। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं ना आप हाँ। तो क्या ऐसी खतरनाक आंधी आने को होती है, आपको पहले से अंदाजा होता है?
हाँ, मिलता है। आजकल हम लोग 5 दिन तक हम लोग हमारा वार्निंग देते हैं, फोरकास्ट देते रहते हैं, चेतावनी भी देते रहते हैं। तो ये अभी जो हुआ है वो सीवियर एक्टिविटी के बारे में आप अभी बोल रहे हैं, उसके बारे में पूरा चेतावनी दे के रखा था, तो इट वॉज वेल प्रेडिक्टेड।
तो जो लोकल प्रशासन है, DM है, SDM है, तहसीलदार है, पुलिस वाले हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है कि गाँव वालों को बताएं कि खतरनाक तूफान आने वाला है?
वो तो उनके काम के बारे में मैं, वो हम लोग उनको देते हैं, हम लोग सीधा लोग के सामने उधर नहीं जाता है ना।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले 5 दिन में इस तरह की कोई खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है या सब शांत हो गया है?
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान, ये सब एरिया के लिए हम लोग अभी भी थंडरस्टॉर्म विद तेज हवा के साथ वार्निंग लागू है, और उसमें भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन वेस्ट UP, ये सब एरिया के लिए स्कॉल के साथ बहुत तेज है, वो कल हो गया ना, वो टाइप ऑफ चेतावनी है ऑलरेडी,
यानी खतरा भी बरकरार है। कह रही थी मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले विभाग की प्रमुख डॉक्टर के सती देवी।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और अब चुनाव चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनावी समर में एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी घबराहट में होते हैं तो वो अपने विरोधियों पर निजी हमले करने लगते हैं। मोदी ने राहुल गांधी को 15 मिनट तक बिना कागज देखे बोलने की चुनौती दी थी। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस बार उन्होंने बिना कागज देखे 18 मिनट तक बिदर जिले के औरत क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और मोदी से कुछ अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में मोदी के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दी है, 7 KG चावल की गारंटी दी है।
तो कहने को कुछ है नहीं, चुप बैठे तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। चलो, अगर विकास के बारे में कुछ नहीं कह सकते, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सड़कों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसानों के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ तो नहीं किया, MSP किसानों को सही नहीं दी, बोनस काट दिया, जब बारिश गिरती है ओला आता है, कॉम्पनसेशन वो नहीं देते, कर्नाटक की सरकार देती है, तो बोल नहीं सकते। तो चलो, भाषण देना है तो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी के भाषण के बारे में बोलते हैं,
राहुल गांधी ने कहा कि जब एक प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उन्हें सच कहना चाहिए।
इस बार आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, वो सब है, मतलब पूरा का पूरा गैंग, रेड्डी ब्रदर्स का पूरा गैंग जो जेल में था उसको आप निकाल कर विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप देश से कहते हो कि हाँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दो, जितनी मेरी बुराई करनी आप करो, मगर मेरी बुराई के बाद आप इन तीन चार सवालों के जवाब दे दो। रेड्डी ब्रदर्स को आप विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना?
प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और गुलबर्गा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के संपत्ति के बारे में सवाल उठाए। दूसरी ओर खड़गे ने बीदर के भलकी में मोदी को झूठों का सरदार कहा, लेकिन मोदी ने बल्लारी की जनसभा में गैर कानूनी खनन घोटाले के आरोपी गाली जनार्दन रेड्डी के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मंच साझा किया।
कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश और दुनिया में बेल्लारी को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे इस बेल्लारी में सिर्फ और सिर्फ चोर और लुटेरे रहते हैं।
जाहिर है कि चुनावी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है, जबकि मतदान अभी 9 दिन दूर है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कर्नाटक में चुनावी बुखार और अब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक दलित खेतीहर की शिकायत पर स्थानीय ठाकुरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बदायूं जिले में फसल काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक दलित व्यक्ति सीताराम को पहले मारा पीटा गया और फिर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पूरे मामले को जानने के लिए हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र बदायूं पहुंचे और उन्होंने वहां से भेजी है ये रिपोर्ट।
वो चाहते थे कि हम गेहूं काटे उनके, लेकिन हमने उनके गेहूं नहीं काटे, अपने काटते रहे। उसी टाइम आए, बस निकाल के जूता मारने लगे, मार पीट के हमको घसीटते हुए गांव तक ले गए। चौपार पे जाके साहब रस्सी से बांध दिया, खींच के नीब के पेड़ से, फिर हमारी मोच उखाड़ी और जूता भर के पेशाब पिलाई।
बदायूं जिले के आजमपुर गांव के रहने वाले सीताराम पिछले महीने की 23 तारीख को अपने साथ हुई घटना की कहानी बता रहे हैं। उनका कहना है कि गांव के ही ठाकुर जाति के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया।
उन्होंने खेत काटने के लिए आपको पैसा दे रखा था या वैसे ही कह रखा था कि हमारे यहाँ काटा?
नहीं, वो कहते रहे कि हमारा काट दो, हमारा काट दो, लेकिन हमने काटा नहीं उनका, क्योंकि अपने गेहूं काटने थे, हमें अपना काम करना था। मौसम उस टाइम खराब चल रहा था।
सीताराम उस समय खेत पर अपने छोटे भाई के साथ थे। जानकारी होने के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस को फोन करके सूचना दी।
सलंबर को फोन लगाया तो फोन करो तो पुलिस आई है।
घटनास्थल पर मौजूद सीताराम के भाई की माने तो मौके पर कई लोग थे, लेकिन बचाने के लिए सामने कोई नहीं आया।
हमारा नाम अनवीर है। अनवीर ज्यादा बढ़ गया तब भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो लोग इतने लड़ाकू और इतनी दहशत है उनकी, इसलिए किसी ने नहीं कहा। ठाकुर हैं, ऊंचे परिवार से हैं, इसलिए कोई नहीं उनसे बोलता है।
सीताराम की ओर से गांव के चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फिलहाल पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार कहते हैं,
दो तीन दिन पहले 6:05 पर सूचना दी थी डायल 100 को कि मुझे यहाँ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। उस पर डायल 100 पहुंची थी, उसमें कार्रवाई की थी, उसके बाद वहाँ आरोप कोई नहीं मिले थे, डायल 100 वापस आई थी, इसको कहा गया था थाने जाकर अपनी कार्रवाई करा लीजिएगा। उसके बाद 50 मिनट बाद फिर एक सूचना आई इसके पत्नी की तरफ से कि वो लोग फिर मारपीट कर रहे हैं और वो मेरा पति उठ नहीं पा रहा। इस सूचना पर डायल 100 फिर से गई थी वहाँ पर और इसे थाने पर लेके आई थी वादी को। उसमें फिर दोनों पक्षों का उसमें एसओ ने कार्रवाई की थी। इसमें
पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जांच की कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी ओर अभियुक्तों के परिवार में इस बात को लेकर नाराजगी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
उसके घर की सुरक्षा तो बढ़ा दी है, अब हमारे घर पे हम दो औरतें हैं और तो सब वो लोग ले गए, चार छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा?
जो बात है वही ना, जो बात है ना वे लिखाई गई फसाने के लिए।
SSP अशोक कुमार भी कहते हैं कि 23 तारीख की घटना के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन करीब एक हफ्ते बाद पीड़ित व्यक्ति की ओर से दोबारा मुकदमा लिखवाया गया और उसी में अमानवीय व्यवहार की शिकायत की गई। वहीं गांव के दूसरे लोगों का भी कहना है कि मारपीट की घटना को लोगों ने जरूर देखा था, लेकिन पेशाब पिलाने, मूछ काटने या फिर पेड़ से बांधने जैसी घटना का कोई चश्मदीद नहीं है।
हम उनकी रक्षा करते हैं।
ज्यादा बंगल टाइप का है थोड़ा सा ना, जाति से एससी का, इसलिए समझता हमसे कोई भेड़े, हम डरते किसी से नहीं है।
हालांकि सीताराम और अभियुक्तों की इससे पहले कभी लड़ाई नहीं हुई थी। पीड़ित परिवार पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन अभियुक्तों और उनके परिवार वालों को इस बात की शिकायत है कि उन्हें उस अपराध की सजा दिलाने की कोशिश हो रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। समीर आत्मज मिश्र, BBC बदायूं।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, मेरा भी नमस्कार
जी। पोस्ट कार्ड है आपके हाथ में, शुरू करिए।
और ये प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हैं, अर्जुन सिंह भदौरिया, ग्राम कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। राजेश जी, बड़ी मजेदार चिट्ठी है वो।
ये पोस्ट कार्ड भेजा है प्रमोद जी ने, क्योंकि आमतौर पर ये ईमेल भेजते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेजा करते हैं।
हाँ, और मजेदार बात ये है कि हमारे लगभग जितने प्रेजेंटर्स हैं सबके नाम लिखे हैं और हर नाम के आगे यही है, पसंद आई, उनकी प्रस्तुति पसंद आई, विवेचना पसंद आई। तो कुल मिला के सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगा।
अच्छा,
बस ये लास्ट में इन्होंने लिखा है कि रामदत्त त्रिपाठी जी को बहुत मिस करते हैं और उनका जिक्र किया है इन्होंने
जी। तो अब आप कोई ऐसी चिट्ठी उठाइए जो किसी को कुछ पसंद ना आई हो, उसकी बात करें, क्योंकि तारीफ जी का ओवरडोज ना हो जाएगी। चिट्ठी मैं देख रहा हूँ।
तो ये है गौतम दत्ता, किशनगंज बिहार से। लिखते हैं कि 2 मई की दुनिया जहान की प्रस्तुति जो संदीप सोनी द्वारा अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड पर की गई थी, रोचक लगी, लेकिन सोनी साहब ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, भारतीय हैं या नहीं, पर्यटक जाते हैं या नहीं। तो इस तरह के
ये मतलब ये उनको उतनी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें एक लेकिन है। संदीप को हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे और मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम का मकसद आपको एक नए देश के बारे में, एक ऐसे देश के बारे में बताना था जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन आपको लगा कि ये नाकाफ़ी था, तो जाहिर है कि ये बात संदीप को मालूम होनी चाहिए, तो हम ये उन तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए।
और ये पोस्टकार्ड है अशोक कुमार ठाकुर, मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा, बिहार से। लिखते हैं कि दुनिया जहान कार्यक्रम इनको बहुत आकर्षित करता है और रासायनिक हथियार के बारे में जो नवीनतम जानकारी मिली बहुत अच्छी लगी।
जी बहुत शुक्रिया। और कुछ इंटरनेट से, ईमेल से आई हुई चिट्ठियां भी दिख रही हैं ढेर सारी आपके पास, तो आइए अब पोस्टकार्ड के बाद उनकी बात करें, क्योंकि पहले पोस्टकार्ड, ये हमारी पॉलिसी है, क्योंकि ये चिट्ठियां दूर से आती हैं
जी
और देर से पहुंचती हैं हमारे पास। तो अब ताज़ा ताज़ा ईमेल्स।
तो ताज़ा ईमेल बड़ी दूर से आई है, सऊदी अरब से। जुबैल साहब की, सादिक आज़मी हैं ये। कहते हैं कि मन में हमेशा कुछ नया सुनने, कुछ नया जानने की लालसा पर दिनों दिन खरा साबित होता दुनिया जहान हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। और इन्होंने उसी प्रोग्राम की तारीफ की है जिसके भी थोड़ी देर पहले ये था कि कुछ पता नहीं चल रहा, संदीप सोनी ने जो प्रोग्राम किया था
स्वाजीलैंड पे।
जी
बहुत शुक्रिया, हम उन तक पहुंचा देंगे ये बात। और हम कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रमों में जितना कुछ हो सके उसको समेटें, लेकिन साथ ही ये बिल्कुल असंभव है कि किसी भी कार्यक्रम में हम सब कुछ आप तक पहुंचा सकें।
जी। और जूजा राम गोदारा, गांव सारला, जिला बाड़मेर, राजस्थान से लिखते हैं।
बाड़मेर से ईमेल आई है, क्या बात।
कहते हैं कि BBC का 1-2 साल पुराना कार्यक्रम अगर सुनना हो तो कैसे सुने।
BBC के 1-2 साल पुराना कार्यक्रम, 1-2 साल में तो बहुत सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। वो कौन सा कार्यक्रम है जो आप सुनना चाहते हैं? हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको आप, जिनकी ऑडियो या वीडियो फाइल गूगल सर्च से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, या अगर आप ईमेल पर हैं, जैसा कि आपने ईमेल लिखा है, अगर आप बताएं कि वो कौन सा कार्यक्रम है तो हम शायद उसका लिंक आप तक भेज सकें।
और ये मेल है गौतम दत्ता, किशनगंज से। लिखते हैं कि सोमवार दिनभर में करीब 15 मिनट तक प्रसारित खबरों में बलात्कार से संबंधित कार्यक्रम आए, लेकिन पिछले पत्र में बलात्कारी आशाराम को जेल के अंदर पहुंचाने वाली उस बहादुर लड़की को सम्मान दिलाने की बात कही थी, परंतु शायद BBC के पास समय का घोर अभाव था।
दो बातें हैं, एक तो ये है कि उस लड़की की पहचान हम जाहिर नहीं कर सकते, और वहाँ से हमने उसके घर अपनी संवाददाता प्रियंका दुबे को भेजकर और उस परिवार की हालत के बारे में रिपोर्टिंग की थी, लेकिन जाहिर है कि हम ये नहीं बता सकते कि वो लड़की कौन है, कानूनन भी और वैसे भी ये ठीक नहीं होता, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये समय की कमी की बात नहीं थी, ये हमारा निर्णय था कि हमें उस लड़की को अकेला छोड़ना चाहिए ताकि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके।
और यह मोहम्मद इकबाल अहमद अरवल से कहते हैं कि खेल प्रेमियों को आप काफ़ी निराश करते हैं क्योंकि आईपीएल रात भर चलता है और बहुत सारे मैचेस बाद में ख़त्म होते हैं, तो जो अपडेट है वो नमस्कार भारत में इनको मिलती है, तो शायद ये चाहते हैं कि पहले ही मिल जाए।
मुश्किल है क्योंकि जाहिर है कि आईपीएल के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है और खेल समाचारों का एक समय है, एक स्लॉट है, वो वहीं पर आते हैं और घड़ी अब इशारा कर रही है कि हमें चलना चाहिए। फिलहाल हम आपको अपना पता बता दें चलते चलते, अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अगर आप दूर दराज किसी इलाके में रेडियो के ज़रिए हमें सुन रहे हैं तो तुरंत कलम उठाइए, कागज़ लीजिए और हमें चिट्ठी लिख डालिए, हमें आपकी डाक से आई चिट्ठियों का इंतज़ार होगा। और अब खेल समाचार। खेल जगत से ताज़ा खबर यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। आज आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच रात 8 बजे कोलकाता में अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। चेन्नई के 8 मैचों में 12 अंक हैं तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैचों में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर बनी हुई है। क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन क्या कहते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए?
नया कैप्टन था दिनेश कार्तिक, परफॉर्मेंस पर्सनल भी खुद अच्छा रहा है और टीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार मैचेस फाइनल ओवर में जीतते आ रहे हैं, एक दो मैचेस हारे भी है, लेकिन जो तजुर्बे का और एक्सपीरियंस का फायदा होता है उन्होंने पूरा उसका उठाया है।
तो अब से थोड़ी देर में कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं ताज़ा रैंकिंग की। इंग्लैंड की टीम भारत को पछाड़कर आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। पिछली बार जनवरी 2013 में वनडे रैंकिंग में टॉप पर आई इंग्लैंड टीम के 125 अंक हैं, तो दूसरी तरफ भारत एक अंक गंवाकर 122 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। बाकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके मायने हैं कि मौजूदा शीर्ष 10 टीमें विश्व कप 2019 में खेलेंगी। T20 रैंकिंग में भी कोई बदलाव नहीं है, जिसमें पाकिस्तान टॉप पर है, अफगानिस्तान अब श्रीलंका से आगे 8वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है, इसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें आती हैं। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर को आज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का तीनों प्रारूपों में मुख्य कोच बनाया गया है। उन्होंने विवादों से घिरी टीम का बर्ताव सुधार कर खोया सम्मान वापस पाने का वादा किया है। लैंगर 22 मई से पदभार संभालेंगे और 4 साल तक पद पर बने रहेंगे। इस दौरान 2 एशेज सीरीज, 1 विश्व कप और T20 विश्व कप होना है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या को ICC की विश्व एकादश टीम में शामिल किया गया है। 31 मई को विश्व एकादश और वेस्टइंडीज टीम के बीच मैच होगा। ICC ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और देखा जाए तो भारतीय दर्शकों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इन दोनों खिलाड़ियों को विश्व एकादश टीम की तरफ से खेलते हुए देखेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और खेल समाचारों के बाद एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। उत्तर भारत में बुधवार को आई जोरदार धूल भरी आंधी में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई हैं। बिहार के मोतिहारी में एक निजी बस पलटने से कई लोगों की मौत की आशंका है। ये निजी बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। बास्क मिलिटेंट समूह ETA ने खुद को भंग करने का ऐलान किया है, मगर स्पेन के प्रधानमंत्री ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। ईरान ने कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से पीछे हटने की धमकी दी है। दक्षिणी जर्मनी के एलवांगन में प्रवासियों के केंद्र में पुलिस की छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। यहां पर ज्यादातर अफ्रीका से आए शरणार्थी हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने विवादित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र योजना आरंभ की है। इस योजना का उनकी सरकार में ही विरोध हो रहा है। बीबीसी समाचार।
हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा यहीं संपन्न होती है। इसे फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की कमलेश मिटनी ने और तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। मैं राजेश जोशी अनुमति चाहता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।